हमने बतलाया था रघुनाथ दास गोस्वामी का जो नियम कह रहे हैं जो एकांतिक भाव और प्रेम नमित चित्त से श्रीमती राधिका जी की उपासना करते हैं, मैं उनके चरण जुगलों को धोकर और उस पवित्र जल को मस्तक में धारण करूंगा, उससे पान करता हूं यदि उनका है। इसके बाद परित्यक्त प्रयोजन समुदाय बाहम अतिथि दुरंधो निरंधम कदल बर्वाधो निपति शिविरम दंतय दस्व चतुर्मी अभिजात कृपया स्वयं गंधर्वा शपथम दिनांकम नय कुमार। इससे पहले कल या परसों मैंने कहा था जीव तत्व के संबंध में, जब भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान, तो उनके अंश को स्वांश कहते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, उनमें से केवल चित्त शक्ति से संपन्न भगवान होते हैं और को आच्छादित करके रखते हैं, तो उसका आंशिक जो विकृत प्रतिफलन होता है उसको चिन्मात्र ब्रह्म कहते हैं। और जब भगवान अपनी सारी शक्तियों को आच्छादित कर केवल मात्र तथा शक्ति से युक्त होकर जब रहते हैं, तब उनका जो अंश होता है वो भी भिन्न अंश कहलाता है। किसने क्या समझा नहीं समझा, हम तो बहुत देर से समझाया, बतलाओ तो बतलाओ क्या समझा। जीव तत्व के संबंध में जोड़ बताओ
और आनंद आंशिक रूप से पूरा परिवर्तन आंशिक।
इसलिए भगवान पर है नहीं, क्योंकि अपनी जो वो शक्तियां हैं सभी सचित आनंद सर्वशक्तिमत्ता और आनंदमयता सर्वज्ञता ये सबको अच्छा देता भगवान रहे और अपनी तटस्था शक्ति को परिपूर्ण रूप में रखते हैं अपने साथ में। उस समय उनका जो अंश होता है उसको इसको विधि नाम, इसमें सबकी तटस्था शक्ति की क्रिया अधिक रहती है, भगवान का तो थोड़ा थोड़ा रहेगा ही, भगवान में ज्ञान है, आनंद है और सत्ता है, ये तो जीव में रहेगी आंशिक रूप में, क्योंकि तटस्थता होने के कारण शक्ति का परिणाम इसको कहा जाता है, वस्तु का परिणाम नहीं होगा। स्वांश जो है वो वस्तु का परिणाम है, वस्तु के द्वारा, और जीव तत्व शक्ति की परिणति है, किंतु भगवान उसमें रहते हैं। भगवान जीव तत्व शक्ति का अंश ये भगवान रहता है, किंतु अपने को इस जैसे अब जैसे देखो हमें दृष्टि शक्ति भी है, हमें प्यार भी है, हमारे अंदर में क्रोध भी है, और भी बहुत सी चीजें हैं, किंतु जब क्रोध होता है तो अपने आनंद को, प्रसन्नता को और सबको हम दबा देते हैं, बल्कि क्रोध ही दबा देता है और उसमें भयंकर क्रोध आ जाता है, केवल क्रोध वहां पर पड़ता है। इसलिए केवल क्रोध से यदि कोई हमारा विचार करेगी महाराज जी बड़े क्रोधी हैं, तो ये गलत हुआ है, क्योंकि उसने और चीजें तो अनुभव की नहीं, केवल क्रोध देखा, और जब स्नेह देखेगा ऐसा होगा, जब उनकी हंसी देखेगा, जब उनकी रसिकता देखेगा, उनका और सब गुण देखेगा, तो इसी प्रकार से भगवान में जो तटस्था सबसे युक्त भगवान जो सचिदान उनका जो अंश होता है वो विधिनाथ कहलाता है, और चूंकि शक्ति की यहाँ पर प्रधानता रहती है, इसलिए शक्ति का परिणाम जीव होगा, शक्ति का परिणाम वस्तु का परिणाम। अब इतना ही समझो तो बहुत धीरे धीरे भजन करते 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 उसकी उपलब्धि परिणत हुआ, इसलिए इसको विभिन्न माने शक्ति के शक्ति कुछ भिन्न है, भगवान अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। जैसे आग है, आग और आग की शक्ति अलग भी है और भिन्न भी है। कैसे अलग है? आग यहाँ पर जलाओ, यहाँ पर जल गई आग, उसकी जो दाहिका शक्ति है वहां तक जा रही है। जब अलग नहीं होती दाहिका शक्ति आग से, तो उसकी दाहिका शक्ति वहां पर जाकर के साथ दे रही है, ये कैसे होगा? फूल और फूल का गंध सुगंध वो अलग अलग है और एक भी है, फूल नहीं रहेगा तो सुगंध नहीं रहेगी, किंतु फूल वहां से वहां नहीं जाता है, उसकी सुगंध वहां तक चली जाती है, इसलिए कुछ अलग भी, इसलिए इसको अचिंत कहा जाता है, इसकी चिंता नहीं की जाती, अचिंत की। निम्बाकाचार्य जी को मन स्वाभाविक भेदा भेद माने, हम लोगों ने माना अचिंत भेद, स्वाभाविक करने से वो शक्ति शक्तिमान का परिणाम हो जाता है, शक्तिमान का परिणाम, वस्तु का परिणाम स्वाभाविक करने से, और शक्ति का परिणाम खाने से जीव परिणत हुई है। भगवान जैसे कहते हैं उनसे नहीं, किंतु उनसे संबंधित है, भगवान से निकला किंतु भगवान की तटस्थित शक्ति परिणत होकर के भगवान की इच्छा से ऐसा सब महाप्रभु को छोड़कर के सब शंकराचार्य ने खंडन किया। शंकराचार्य जी कहते हैं कि कुछ अंश है, हुआ ही नहीं, जीव है ही नहीं, एकदम है ही नहीं, उन्होंने कहा कि जीव ही सत्य है, जगत भी सत्य है, मतलब क्या हम लोग जितने भी सब आचार, शंकराचार्य ने कहा कि जीव और जगत है ही नहीं है, ये ब्रह्म में ऐसा भाव था, जीव है ही नहीं है, जगत ये सब बहुत तो है ही नहीं, नेह नाना चिंतन, कुछ है ही नहीं है। तो काजी से ये जो देख रहा है दुनिया बहुत से, तो ये देख रहा है शंकराचार्य ने कहा कि उसे एक दूर से देख रहा है, स्वप्न मत देख रहा है। तो वैष्णव ने जीव गोस्वामी ने उनसे पूछा स्वप्न कौन देख रहा है, स्वप्न देखता कौन है। सब शंकराचार्य बगल झांकने लगे, सबको युक्ति बनाना पड़ा। तो यदि कहते हैं ये जीव है तो जीव वस्तु हो गया, तब सब गड़बड़ हो गया, ये तो जीव तो कहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि तो ये ब्रह्म ही देखता है। तो ब्रह्म तो अपने से अलग कोई चीज होगी तब तो देखेगा, अपना तो कैसे देखेगा। इसलिए वैद्यो ने कहा कि ये जो देखने वाला है देखता है ये बहु, ये इतना बहुत देखा है, तो वो ब्रह्म को भी अज्ञान है जो इतना दिखता है उसको, उसको तो केवल अपने को देखना चाहिए। और देख करके कहता है किसको, यदि दूसरा वस्तु आई नहीं है तो कहा किसको सुनाता है किसको। इसी तर्कों पर युक्तियों पर शंकराचार्य के विचार को, अजय शंकर भी ठीक है भगवत भक्त, इन्होंने भगवान को भगवान ने उनको आदेश दिया इन नास्तिकों से हमें बचाओ, बहुत भयंकर। इसलिए शंकर जी उन लोगों को भगवान से दूर रखने के लिए और जगत की सृष्टि उत्तरोत्तर होती रहे ना तो सभी तो मुक्त होगी, इसलिए शंकराचार्य के रूप में लिप्त होकर कल्पित माया शास्त्र और कल्पित मायावाद को इतना देख दिया ना तो शंकर को झूठ मान लिया। किंतु रामानुज विष्णु स्वामी निम्बार्क जी और ये सब जितने जो है चैतन्य महाप्रभु के जो पांडव तो इनमें मत भेजते हैं, वो तो एक होना चाहिए। कहते हैं इन लोगों में भेद नहीं है, एक ही की बात होगा। केवल बद्ध जी के लिए सहज रूप में कैसे उस चीज को पाए धीरे धीरे समझ कर करते, इसलिए अपने उनके तारतम्य से उन्होंने ऐसी बात को वैसी से दर्शन कर दार्शनिक तत्व की भी आलोचना होनी चाहिए। पहले बहुत दिनों तक यही सब हुआ शायद हमने जब
धारणा
हमने आ गए तब पूरा तो होता नहीं है। पहले हमने दर्शन शास्त्र से ये लेकर के ये सब पहले बहुत दिन आ गए, किंतु आप लोगों को जानना है ये सब नहीं जानेंगे तो भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी। उसमें ये सब जो कहा जा रहा है ये सब प्रतिष्ठा ही नहीं, ये जो चल रहा है ये पहले उसमें पहले मिथ्या हो उसको थोड़ा बहुत ध्यान लेना चाहिए। दर्शन शास्त्र के ग्रंथ चैतन्य चैतामृत दर्शन शास्त्र है, साथ साथ में रस भी ग्रंथ है, सब कुछ है, उसको पढ़ो, जैव धर्म पढ़ो, वेदांत दर्शन किस चीज पढ़ा जाए।
मुझे जहाँ भागवत थोड़ा बोझने
के यही बच्चों के अनुभव से नहीं ऐसे, वो तो दिन भर बोधी में ले करके और अपने कम से लगाए नहीं रहेगा कि पीते रहो जीवन भर ऐसे, उसको कहेगा कि ये देखो उठो अपना कुछ चेष्टा के लिए अपनी चेष्टा के अपनी चेष्टा ही नहीं रहा सब कुछ। रामानुज क्या कहते हैं मध्वाचार्य का विचार के हैं चैतन्य महाप्रभु की सब लोगों से विशेषता क्यों है ये सबको विचार करके देखना। और नहीं तो केवल यही सब जो बातें जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना तो कोई ना कोई वो पूछ देगा और तुम लोग कोई उत्तर ही नहीं है समझ नहीं सकते लोगों में और हम लोगों में यही अंतर, वो केवल वही क्यों देखते हैं और इधर छोड़ देते हैं इसलिए भक्त नीचे भी पड़ता है। रघुनाथ दास ये बताया है पर प्रयोजन समुदाय बाह पशु बद्रीनाथ दास को स्वामी जी बतला रहे हैं, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और बहुत दुर्भाग्य हूं, दुर्बुद्धि हूं तो और तिलरूप सनातन इत्यादि उन लोगों ने हमको छोड़ दिया, परीक्षा से छोड़ करके हमें साधारण अवस्था है। पिताजी का ज्ञान सुनिए, पिताजी का ज्ञान मिले कितने हित और कितने हित, मुझको मर जाना चाहिए कि जीवित रहना चाहिए, अब मुझको कितनी मेरी समझ में नहीं आता। उनके प्रकट में भी अब तक जीवन धारण किए हुए और महासुख सागर में निमज्जित हो रहा, अब इसलिए दांतों में तेल धारण करके इंदम दंत दांतों में तीन रस करके अत्यंत कातर होकर के सभी मैंने कातर होकर के मैं श्रीमती राधिका जी के गंधर्वा जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अब उनके इस जगत में रहा नहीं जाता, स्वपद नलिनांकम अपने चरण कमल के अंत में अर्थात निकट में मैं तुम्हान मुझे अपने चरणों के समीप, क्यों चरणों के समीप ले लें, स्वरूप दामोदर जी वहां पर होंगे किसी रूप में, रूप गोस्वामी भी किसी न किसी रूप में सब मित्र लीला में पहुंचे तो वहां पर सब उनकी लीला में सेवा में इसलिए जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपने चरण प्रांतों हमें बुला लीजिए। किसी के लिए विरह होता है किसी को क्यों विरह होता है, जिससे चाहे लौकिक रूप में चाहे पारलौकिक रूप में यदि उसकी अज्ञानुभूति होती है कि हम मैं इससे बहुत उपकृत हूं अब ऐसा मेरा उपकार करने वाला और कोई नहीं मिलेगा तो इसके लिए विरह प्रियता के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है, प्रियता की उपलब्धि होनी चाहिए, ये हमारा सबसे संसार वाले अधिकांश रूप में लौकिक भोग के ऊपर में प्रीति रुचि निर्भर करती है, जिससे अधिक भोगों की वस्तुएं मिलती हैं हमको सुख होता है ऐसे लोगों के प्रति, माता को पुत्र से या माता पिता का पुत्र से पुत्र का माता पिता से स्नेह होता है, स्त्री का पति के पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति, इस जगत में मित्र का मित्र के प्रति, किसी स्वामी के प्रति किसी सेवक का भी होता है। एक कोई सेवक जीवन के प्रथम काल में बच्चेपन से ही अपने मालिक के यहाँ नौकरी करता है और मालिक उसको अपने समान ही जानता है, उसकी शादी विवाह घर द्वार कराना सब समय उसका सब कुछ देख करके और उसको करता है, तो उसके लिए यदि मालिक चला जाएगा तो उसके लिए बड़ा पीड़ा। माता अपने पुत्र के विरह, पुत्र अपनी माता पिता के विरह, ये सब होता है। किंतु बहुत से लड़के आजकल तो या पहले भी देखा जाता है अपने पिता को माता को मार देते हैं, माता पिता अपने पुत्र को भी मार डालते हैं, और अंग्रेज इत्यादि का उदाहरण ये सब सर्वत्र है, ऐसा भी देखा जाता है। जिससे प्रीति होती है भोगों के आदान प्रदान से, ये लौकिक प्रति के ऊपर में गिरा दिया। एक स्त्री अपने पति के लिए इतना क्यों रूप से मर जाने के बाद क्यों, इसलिए उनके सामने में बड़े सुख से आराम से निर्भय होकर के वो रहती थी, जैसा चाहती थी, वो घर की मालिक नहीं रहती है, सब लोग उसका आदर करते, और पति चले जाने के बाद में अब लड़के हैं वही, अब उनकी स्त्रियां धीरे धीरे मालिक होने लगती, उस समय अब उनकी धीरे धीरे धीरे, कब तक वो पुत्र लोग उनको आदर करते हैं, जब तक कि अभी उनके हाथों में कुछ है रुपये पैसे उनके पति का दिया, जो वो भी निकाल लेंगे बस, अब माता पिता को रख देंगे, माता को या पिता को, बस वो मालिकाना उनके स्त्रियों में आ जाए, वो उनका सुहाग हो जाए। इसलिए यहाँ पर देखें ये जितना जो कुछ है पारमार्थिक सुख या दुख की तुलना में जगत का सुख और दुख दोनों ही नगण्य है। परमार्थ इतना एक बहुमूल्य चीज है जिसकी हम लोग अभी कल्पना नहीं कर सकते, ये जिनको जितना अनुभूति हुई है वो लोग समझे। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के, चैतन्य महाप्रभु जी के स्वरूप दामोदर के, गुरु सनातन के कैसे प्रिय हैं और क्यों हैं अभी हम लोग नहीं समझे, उनकी अनुभूति थी इसलिए उनके लिए इतना तीरथ विराज कर रहे हैं।
कोरोना
की उपलब्धि नहीं होने से हमारे प्रति कितना करुणाशील से जो चीज नहीं देना था वो भी उन्होंने दे दिया। भक्ति से तो परम दुर्लभ और कोई चीज नहीं है, और भक्ति में भी उन्नत श्रेणी की जो भक्तियां हैं प्रेम और उससे संबंधित में जो चीजें हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास को दिया। रघुनाथ का सबसे बड़ी कीमती चीज ही स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप, ये सबसे बड़ी उनकी चीज, ये महाप्रभु जी की असीम करुणा जो महाप्रभु स्वयं उस बच्चे को नहीं दे सकते थे उनके संग में दे करके, ये सबसे बड़ी भारी करुणा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रश्न किया स्वरूप दामोदर से, ये महाप्रभु जी से कह दें कि मैं थोड़ा सा साधन और साधु के संबंध में जानना चाहता हूं, अपने महाप्रभु जी से नहीं कह सकते थे क्यों,
परीक्षा में सौंप दिया
नहीं, महाप्रभु के पति उनका गौरव भाव थी,
महाप्रभु उनके छोटे मन को थे बालक बोले भूल,
बालक भी और महाप्रभु के पति उनका भी गौरव भाव था, जैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद और ये सबका महाप्रभु के प्रति अत्यंत घनिष्ठ भाव था, महाप्रभु इन लोगों से तो बहुत जरा दूर रहते थे, स्नेह किंतु है आपके लिए बात ठीक है, किंतु इन लोगों का उनके प्रति गौरव भाव था,
हमारे गौरव बुद्धि के राघव भजन तो गौरव बुद्धि का महाप्रभु
अभी नित्य सिद्ध के अभी तो नहीं दिखा रहे हैं ना, वो केवल साधन भजन का ही रागानुगार साधक भजन साधक अभी भजन के साधक अभी अपने को दिखला रहे हैं, जब अपने सिद्ध स्वरूप से उनका चिंतन करते हैं तो वो दूसरी बात, वहां पर कोई मर्यादा और गौरव नहीं, तो वहां पर उनको प्रणाम क्यों करेंगे, प्रणाम करना क्या चैतन्य चैतान्य में स्वरूप दामोदर जी ने राय रामानंद को इन लोगों ने महाप्रभु को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, ये प्रार्थना की, राय रामानंद का हो सकता है गोदावरी के तट पर, इसके बाद में नहीं रहता, और स्वरूप दामोदर का जो महाप्रभु को प्रणाम किया उनके बराबरी के रूप में उनको दे, क्योंकि रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी गोपाल भट्ट हैं, ये सब बहुत जूनियर हैं इस जगत में आने में और उनसे, इसलिए इनका उनके प्रति गौरव, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनसे कहा कि जरा इसे कृपा करके ये पूछ दीजिए हमारे तरफ से, ये मुझको क्या करना चाहिए, साधन भजन मेरे लिए क्या है। तो एक दिन सभी बैठे रहे थे तो उसी में स्वरूप दामोदर जी बड़े प्रसन्न होकर के कहा, जैसे ये बच्चा आपसे कुछ सीखना चाहता है, ये पूछता है हमारे माध्यम से आपसे, या आप अपने मुखारविंद से मेरे लिए क्या साधन और साध्य है, उसको क्या करना चाहिए, ये कुछ उपदेश। महाप्रभु जी ने उनको बुलाया और डायरेक्ट उनसे कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी, देखो जिनके हाथों में तुमको मैंने सौंप दिया है, ये भी हमसे अच्छी तरह से साधन और साध्य, या जो कुछ तुम पूछना चाहते हो हमसे अधिक जानते। महाप्रभु जी ने ये कहा जैसे हमसे अधिक जानते, ये ठीक है कि गलत है, महाप्रभु जी ने कुछ वंचना तो किया ना उनका, अपने सब जानते हुए उनको कह दिया इनको। हाँ ऐसी बात नहीं, ऐसी बात सच में महाप्रभु जी ने तो कभी साधन किया ही नहीं। महाप्रभु कैसे साधन किया जाता है और कैसे उसको सहज रूप में कहेंगे, महाप्रभु को ये सब चीज नहीं, वो तो रसिक रसिक शेखर है ना, वो सबसे अधिक, और वो है विशेष जाति, बतला सकते हैं कुछ को, किंतु जितना पुंखानुपुंख रूप में परिपूर्ण रूप में अनुभव के साथ में उनके लिए जितना कितना जरूरत है कैसा बतलाना चाहिए, ये सब काम। और स्वरूप दामोदर से भी अधिक बतलाएंगे रूप गोस्वामी के पास में, इसलिए स्वरूप दामोदर इत्यादि में कोई ग्रंथ उतना नहीं लिखा, उन्होंने लिखेंगे तो एकदम हाई स्टैंडर्ड से अपनी भावना से ललिता विशाखा की दृष्टि से वो जो कुछ होगा वो लिखेंगे। इसलिए उनकी सेवा करने वाली ये जो रूपमंजरी रूपी जो रूप गोस्वामी है रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी इस विषय को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने जगदी चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया और सबकी प्रेरणा करके उन संगर ने इसको पूछा। अभी ये बतलाने का जो ढंग है हम गुरु महाराज के मुख से सुना, ये प्रभुपाद जी की वक्तताएं उच्च कोटि की दार्शनिक भाषा से होती, दार्शनिक भाषा में वैज्ञानिक उसमें शब्द रहते, इसलिए सब साधारण लोग उनको नहीं समझ पाते। इंग्लैंड का कोई प्रोफेसर दर्शन का, वो भारतवर्ष में सब जगह घूम करके आया, बड़े बड़े विद्वानों से मिलकर, तो एल्बर्ट हॉल कलकत्ते में प्रभु आज जी का भाषण हो रहा था अंग्रेजी में, तो वो वहां पर गया सुनने के, सब लोग सुन गए थे। जब सभा समाप्त हो गई तो वो कह रहा है एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही सुंदर, बहुत चमत्कार पूर्ण हुआ। तो गुरु जी ने उससे पूछा कि तुमको क्या चीज अच्छी लगी ये तो बतलाओ, तो यही तो बात है कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। आज तक हम जिन विद्वानों से मिला हमसे अधिक जानने वाले नहीं मिले, उनको विचारों को तो मैं समझ सकता था और उनसे बातचीत करता था, क्योंकि इनका इतना उन्होंने जो कुछ बतलाया हमारे समझ में कखग अभर एक भी नहीं, कुछ भी, ये भी तो बड़ी विचित्र बात है।
प्रभुपाद जी ने जो ब्रह्म संहिता से टीका लिखा, लेकिन तमाम जी समाज जी आपको कह रहे थे कि मैंने पहले मैं सोचा था मैं एक इंटेलिजेंट गायन हूँ, दो बार बार समझ में नहीं है, आप जब ब्रह्म संहिता पढ़ा थी उसको पढ़े थोड़ा सा समझ में आ रहा है।
वो तमाम कृष्ण उनका एक एक्सीलेंट बुद्धि का एक लड़का है, अब वहाँ का आचार्य है, तो ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी का अंग्रेजी है, अंग्रेजी उसकी व्याख्या है, सब में ऐसे ऐसे सब हैं समझना बड़ा भारी समझ ले साधारण लोगों को,
दो बार पढ़
तो हमारे पास में आए तो मैंने उसकी जब व्याख्या की सबको, मैं उनको दो चार बार पढ़ा हमारे समझ में कुछ आया नहीं, आप यहाँ आकर के सब देखिए इसको समझ पा रहे। हाँ तो प्रभुपाद जी को इसलिए कह रहा हूँ, इतनी उच्च स्टैंडर्ड की उनकी भाषा और उनके शब्द और उनके दार्शनिक विचार होते हैं साधारण लोग, तो अब प्रभुपाद जी की इच्छा होती है जो भारती महाराज हैं, मेरी महाराज जी ऐसा वक्तृता करते हैं जो सब लोग हंसने लगते हैं, और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम भी उनको हंसा दें, कभी कभी रुला दें। तो प्रभुपाद जब भारतक वैसा करते थे वो हंसते नहीं, लोग हंसने की बात करने पर भी नहीं हंसते थे। क्यों? इतना गंभीर साधन हम लोग भी उनके भावों को समझ नहीं पाते। इसलिए स्वरूप दामोदर से उनके हाथों में सौंप दिया ये महाराज, महाप्रभु जी जब समझाएंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनके हाथों में दे दिया। साधन शास्त्र सत्य जो कुछ भी है सब सहज रीति में, और इसी के पीछे से उनको दे दिया। जो चीजें उनके समझ में नहीं आई वो रूप सनातन के निकट आकर के सबके रूप। इसलिए शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु एक होंगे, किंतु शिक्षा गुरु का बहुत इसीलिए कहा गया जो कुछ इनसे कुछ उनसे कुछ उनसे सबसे शिक्षा ले, तब वो शिक्षा कंप्लीट होगी। हमारे रामानुजाचार्य थे, वैसे तो बड़े धुरंधर विद्वान हैं, बहुत बड़े भारी विद्वान, और समस्त शास्त्रों को पढ़ लिख करके तब वो यमुनाचार्य से संन्यास लेना चाहते थे और उनसे खुद कुछ जानना चाहते थे। यमुनाचार्य पहले से ही इस चीज को जानते थे जो अंत में हमारे पास में आएगा और हम हमसे ही संन्यास लेगा, वो जानते थे। इसलिए अपने उसमें जब परलोक जाते हैं लोग तो वसीयत कर जाते हैं, वसीयत जानता है दिल जिसको करते हैं दिल करके जाते हैं, तो उन्होंने दिल कर दिया वसीयत किया जो हमारे अप्रकट के बाद में रामानुजाचार्य श्रीरंगम का आचार्य होगा और उनके संप्रदाय में ही संप्रदाय में वही आचार्य होंगे उनके जाने के बाद। तो रामानुजाचार्य समस्त शास्त्रों के विद्वान थे, अद्भुत उनकी मेधा थी। तो जब अपने गुरु जी के पास में उनसे संन्यास लेने जा रहे हैं तो उनका विमान आ रहा है, माने अप्रकट हो गए हैं। अप्रकट होने पर उनको कपड़े लेकर के रथ बना करके उनको पासी में ताम्रपर्णी या कौन नदी है उसमें उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे थे। हजारों आदमी रोते हुए उनसे पीछे आ रहे हैं। पास जब ये जा रहे थे तो बीच में उनको भेंट हुई, क्या हुआ कौन है? आपके यमुनाचार्य का वो अप्रकट हो गए, अब रोने लग गए, जो उनसे भेंट नहीं हुई, मैं उनसे डायरेक्ट रूप में उपदेश और ये सब लेना चाहता था, वो तो हुआ नहीं, रोने लगे और बोले जो अच्छा थोड़ा सा हमको दर्शन करा दो और उनके कपड़े को हटा दो। तो कपड़ा हटा दे दिया, उनको नीचे उतार करके उनको दर्शन कराया गया। तो उनकी ये तीन अंगुलिया, एक अंगुली ऐसे थी और तीन अंगुली ऐसे थी, बढ़ते खाली भाई ये इतिहास का तो ये सब ठीक है, ये इसमें क्यों ऐसा हो गया? लोगों से पूछा तो कोई नहीं बतला था। फिर उन्होंने चिंतन करके बोले जो मैं त्रिदंड संज्ञा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उनके सामने, मैं त्रिदंड बस एक अंगुली जो ऐसी थी वो ऐसे हो गई। मैं वेदांत का मैं श्री भास्कर लक्ष्मी जी के अनुसार में और हमारे पूर्व जो वैष्णव लोग हैं उनके अनुसार में करेंगे, क्योंकि मायावाद भास्कर चारों तरफ में प्रचलित हो तो सिर्फ लोगों का सत्यानाश होता है, इसलिए मैं इस जरूरी काम को जरूर पड़ूंगा। अब साथ ही साथ एक और अंगुली खुल गई थी, अभी एक था। फिर उन्होंने कहा मैं सब शास्त्रों को प्रकाशित जैसे कि वैष्णव धर्म का प्रचार, बस उनकी योजना बस वहीं पर उन्होंने त्रिदंड संन्यास लिया। अब सब लोग कहने लगे कि आप उनका पत्र संस्कार हुआ, किंतु फिर हुआ उनकी गद्दी पर आज भी गुरु की गद्दी या राज सिंहासन खाली नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ में अंततः उसका नॉमिनेशन हो जाना चाहिए, साथ साथ संस्कार कुछ होना चाहिए। गद्दी तो खाली नहीं रहनी चाहिए, और उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसे वसीयत है कि उनको उनके बाद में आचार्य कर दिया जाए, इसलिए आप आचार्य होना चाहते कभी ऐसे नहीं रहा। उनके 12-14 प्रधान प्रधान शिष्य शहीद होने उनका नाम भी चल रहा था, किंतु नहीं दे रहा होगा संन्यास इत्यादि, उनके लिए बंद हो गया होगा, क्या हुआ ये तो नहीं, किंतु ऐसे वो एक एक शिष्य के पास में गए, चाहे गृहस्थ हो और चाहे ज्ञानी जो ग्रंथपुरम का विद्वान और सिद्धांत विद जिनको सभी लोग मानते हैं, ऐसे सब लोगों के पास में, और उनके घर पर उनकी सेवा करके उनसे सब उपदेशों को एक के बाद में दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सबको सब दे, क्योंकि अलग अलग उनके शिष्यों के पास में अलग अलग तरह तरह के उपदेश हैं, किसी को एक अच्छा लगा है, किसी को एक अच्छा लगा है, उसमें प्रशिक्षित है, इसलिए सबसे शिक्षा लेकर के जब उनकी शिक्षा परिपूर्ण हो गई और सब लोगों ने अनुमोदन किया कि नहीं वे योग्य है, क्योंकि उनको सेवा के द्वारा प्रसन्न कर दिया, यदि वो इसी समय बैठ जाते वो जैसे आजकल होता है, इसे सेवा के द्वारा संतुष्ट किया, उनका सिद्धांत सब जान लिया, वो लोग प्रसन्न होकर के कहा नहीं ये योग्य व्यक्ति, उनको भी परीक्षा करके दिया, और इसके बाद में जब अनुमोदन करके दिया तो 108 वर्ष की उम्र तक अत्यंत वृद्ध अत्यंत लंबी आयु थी उन्होंने दे सकता। इसलिए इसी संप्रदाय का प्रचार दक्षिण भारत में उत्तर भारत में सर्वत्र, इसलिए शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक होने पर भी शिक्षा गुरु तब, हाँ उसमें भी देखा जाइए देखा जाना चाहिए कि हमारे मन के अनुकूल हमारे ऊपर में कृपा करने वाले और मैं जिस विषय को चाहता हूँ उस विषय में कौन वैसे अभिज्ञ, और दीक्षा गुरु के अनुकूल भी होना चाहिए, दीक्षा गुरु होने दोनों अनुकूल मैंने एक भाव बचा का होना चाहिए तब वो ठीक रहता है, और नहीं तो मैंने उसको इसलिए कहा गया दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों एक ही कोटि के वैष्णव हो तब वो ऐसा संभव, नहीं तो विरोध रहेगा ही, इसलिए ऐसे दीक्षा गुरु वो कृष्ण के स्वरूप माने गए, दीक्षा गुरु का भी जाना कृष्ण का स्वरूप, आप शिक्षा वो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो विरोध होकर के बस सब चौपट हो जाएगा, विशेष करके लौकिकता के दृष्टि से ये सब नहीं कहा गया, इसीलिए कहते हैं स्वरूप नाम तो इनके क्या है महाप्रभु से क्या है शिक्षा गुरु किसी शिक्षा और रघुनाथ दास के स्वामी, रघुनाथ दास का स्वामी क्या है हमारे ये क्या है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट वो भी शिक्षा उनके शिक्षा गुरु क्योंकि इनसे पहले आए, बल्कि जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को आदर करके अपना परस्पर बराबर था मानते, इसलिए ये बतला रहे हैं कि मेरे जो शिक्षा गुरु चैतन्य महाप्रभु चले गए, जैसे वो उनके इष्ट देव आराध्य देव हैं, और वो भी साधारण आराध्य नहीं, वो कृष्ण है किंतु राधा जी का भाव और अंग कांति लेकर के जगत में अपना विशिष्ट प्रेम देने के लिए है, जो आज से एक कल्प पहले के चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होकर के देने के लिए है, ऐसी वेद कंती की उन्नत उन्नतरी विराट करुण्यावतीर्ण करो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसान, उन्नत उज्ज्वल रसान पर खेद मत देना नहीं तो गड़बड़ अर्थ हो जाए, उन्नत उज्ज्वल रस को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, इस चीज को समझना अच्छी तरह से सबको नहीं समझेंगे किसी दिन को, उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन करने के लिए राधा जी के भाव को कहते हैं गोपियों के भाव को उन्नत उज्ज्वल, ये कभी भी देने की चीज नहीं है, ये तो महाभाव की स्थिति है राधा या प्रणय महिमा से इसलिए इसको देने के लिए उन्नत उज्ज्वल नहीं आए बल्कि उन्नत उज्ज्वल रसायन उसकी शोभा देने के लिए लता को देने के लिए नहीं आए लताओं में जो फूल खिले हुए हैं उन फूलों में से लेकर के दूसरों को दिया और लता को खा करके दे देगा तो क्या होगा वो देने के इसलिए उसके फूल है फल है ये दूसरों को दिया लता भी सुरक्षित रहे पुनः खुले और फले और उसका वितरण भी कर दिया गया इसे चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति उसकी शोभा देने के लिए अतः ये रूप गोस्वामी का रघुनाथ के स्वामी का जो भाव है तो यही देने के लिए है राधा जी का भाव देने के लिए नहीं कुलकुम का स्वागत करने के लिए है तो उसी को कह रहे हैं वो मेरा जैसा दुर्बुद्धि और ज्ञान शून्य व्यक्ति कोई नहीं अब मुझे अनुभूति हो रही है महाप्रभु जी रहते मैंने इसका विचार नहीं किया स्वरूप दामोदर सर रहते मैंने ये सब विचार नहीं किया उनसे ये सब पूछा कुछ कुछ पूछा जा सकता है साधु को और सनातन गोस्वामी से वो लोग भी उन्हें छोड़ करके चले अब मैं क्या अब मैं असहाय और किसी चीज को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं अब तो राधा जी के कृपा के बिना और कोई व्यक्ति नहीं हाँ तो वो रघुनाथ दास कृष्ण दास कविराज गोस्वामी साहब उसने राधामानंद डायलॉग में बतलाया है कृष्ण भक्त विवह बिना दुख नहीं और कोई दूसरा दुख नहीं है हम लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए किंतु होता नहीं है संसारिक लोग या हम लोग अभी साधन के क्षेत्र में गुरु जी के लिए गुरु जी चले गए तो विरह तो कुछ हुआ नहीं अभी भी गुरु जी की महिमा वर्णन करके जो हमको संसार समुद्र से पकड़ करके ले आए और हमको इधर में जो दिया आज जगत की लोग पूजा कर रहे हैं हम लोगों की उनका ऋण हमें और उनकी करुणा हमको याद नहीं स्मरण नहीं समझ नहीं पाते उनके ऊपर हाँ हो सकता है कि एक दो जन्मों के बाद भी साधन करके जिसमें हृदय में सब शक्ति की वृद्धि आएगी ना कोई भाव आला हो सकता है कि उस समय में हम लोग कुछ समझे इनके अंदर में तो वो चीजें हैं इसलिए समझ रहे हैं अभी जो चीज दिया एक बंदर को एक चिंतामणि दे दो क्या करेगा वो दांते काटेगा आपका जूता लेकर के भागेगा आपके थैली लेकर के चला गया और थैली में सोने का हार है बैग होता है इसलिए आई लेकर के जा रही थी और उसके बैग को उसने छीन करके और उसमें हीरे जवाहरात के बस ये सब स्वर्ण अलंकार और उसको लेकर के पेड़ पर चढ़ गया और दांत दिखला रहा है किसने देखा कि हाय हाय क्या करें कहां लेकर के भाग जाएगा लोगों से कहा लोगों ने क्या किया एक रोटी का टुकड़ा ले आए एक रोटी या एक फल संतरा या कोई भी और उसको ऊपर में दिखला करके छोड़ दिया और बंदर क्या करता है उस महामूल्यवान थैली को खींच करके असफल वो सोचता है कि हमारा प्राप्ति हमको मिल गया हमारा काम निकल गया हमारा स्वार्थ हो और उसने क्या किया उसने छोटी सी चीज देकर के अपना महामूल्य अर्थवान वस्तु को ऐसे हम लोग अपनी रीति की है ठीक ऐसे ही ये तो कहते हैं बंदर को जरूरत नहीं है वैसे हम बंदर अभी हैं हमको अभी संसारिक वस्तुओं की रुपया पैसा प्रतिष्ठा ये सब की अभी जरूरत है संसारिक भोग की जरूरत है इसलिए हम लोग बंदर कभी गए नहीं जब तक स्वरूप शक्ति की वृत्ति नहीं आएगी वैष्णव की ऐसी कृपा नहीं होगी उस चीज को हम लोग समझने के लिए अपारक है नहीं समझ सकते इसीलिए तो हम लोग बड़े आनंद के साथ में घर में खा रहे हैं पी रहे हैं बच्चों में खूब ढेर मिल कर रहे हैं यहाँ पर भी खूब अच्छी तरह से खाया पिया और बच्चों ने खाया ये महामूल्यवान समय हमारा नष्ट यूं ही हो रहा है जीवन नष्ट हो रहा है न गुरु के प्रति ऐसी आ सकती है अंततः थोड़ी सी भी आसक्ति, जैसे कि गुरु मेरा थे और आरुण और ये सब अभिमन अब सुखमन इत्यादि का देखा जाता है, वैसा भी तो नहीं देखते, ऐसी भी वृत्ति नहीं क्या। रघुनाथ दास गोस्वामी का जैसा अपने गुरुओं के प्रति इन लोगों के प्रति अभी हो रहा है, उन्होंने व्यक्त किया, हम लोगों में ऐसा हो कभी गुरु जी की महिमा किसी से कहते हैं कि गुरु जी ऐसे हैं, बड़ी कृपा करते हमको ऐसा कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है प्रतिदिन अपने गुरु जी की कम से कम थोड़ी सी महिमा का वर्णन, हम लोग स्मरण नहीं करते, सो करते उत्तर नजर क्या क्या चीजें याद आती है, कथम ये तो हृदय में लगता नहीं। एक तितली है ना, उसका पंख पकड़ो तो क्या होगा, कोई उसका पराग होता है वो लग जाएगा, तो गुरु जी के चरणों का पराग हम लोग कहते हैं कभी क्यों नहीं लगता, उसकी मन नहीं समझते गुरु जी ने हमको क्या दिया, ऐसा परमात्मा गुरु जी को देखो, हम लोग अपने गुरु जी का नाम ले सकते घंटों विलाप करते रहते, दिग भी बन जाते, गदगद बन जाते, अपने नहीं बोल सकते, बोल रहे हैं और उनका गुणानुवाद है, बस बोल नहीं सकते, तो हम अभी नए हम लोग आए हैं, हम लोग रहे इतना आपसे भरी हुई, ऐसा हम लोगों ने कभी देखा नहीं। तो गुरु के प्रति गुरु आते हैं उनका भी ऐसा, तो ऐसा इसलिए इनको उपलब्धि हो रही है, क्या चीज दिया,